أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے حدود کے بارے میں بات کر رہے تھے. حد عام طور پر استعمال بھی ہوتا ہے، حد الہی یا حدود الہی، جس کا مطلب جو ہے وہ سزائیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض گناہوں اور بعض جرموں کے سلسلے میں معین کی گئی ہیں، جن میں سے ہم نے چند ایک کے نام پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور ان کی سزائیں بھی بیان کی تھیں. مثال کے طور پر چوری کی سزا بیان کی تھی. پہلی بار میں سیدھیات کی چاروں انگلیاں کاٹی جائیں گی، دوسری بار میں پیر کا پنجہ جو ہے وہ ابھار تک، اور تیسری بار میں جو ہے وہ عمر قید، اور چوتھی بار بھی اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو قتل. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی چند ایک گناہ اور ان کی سزائیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں جو اگر انسان ان کاموں کا مرتکب ہو جائے، ان کو انجام دے دے، تو گویا اس نے گناہ کیا ہے، حرام کام انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور اس کی سزائیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے معین کی گئی ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جو ہے وہ اسلحہ اور ہتھیار لے کر مسلمانوں پر لوگوں پر چڑھائی کرتا ہے یا لوگوں کو ڈراتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی سزا قتل ہے. یا اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس کی بھی جو ہے وہ حدود معین ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ سب جو ہے وہ مفصل کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی طرف آپ جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ کافر جو ہے وہ مرتد فطری ہے یا مرتد ملی ہے. فطری یعنی یہ کہ جب جو ہے یہ پیدا ہوا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان تھے، اور یہ بھی پھر مسلمان رہا اور اس کے بعد کافر ہو گیا. ملی یعنی یہ کہ اس کے ماں باپ جو ہے کافر تھے، یہ مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا. ان کے احکام جو ہے وہ اور ان کی سزائیں ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے ان سے جدا ہو جائے گی، ان کے مال کو جو ہے وہ وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اور بھی جو ہے وہ کچھ احکام ان کے سلسلے میں ہیں، اور بھی جو دوسرے گناہ انسان انجام دیتا ہے ان کی بھی سزائیں معین کی گئی ہیں. البتہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معین کی ہیں، لیکن یعنی بالکل واضح ہیں، اور بعض جو ہیں وہ معین نہیں کیے ہیں، بلکہ وہ جو ہے حاکم شرع جو ہے جو گناہ انجام دیا گیا ہے، جو کام انجام دیا گیا ہے، اس کی خرابی کو دیکھتا ہے کہ اس نے معاشرے پر کتنا اثر ڈالا ہے، کتنا خراب کیا ہے، یا خود اس شخص کو کتنا خراب کیا ہے، اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس سے جو ہے وہ خود جو حاکم شرع جو ہے وہ کسی گناہ کے بارے میں کہ جس کی سزا معین نہیں کی گئی ہے، تو حاکم شرع جو اس کی سزا معین کرتا ہے اس کو جو ہے وہ تعزیرات کہا جاتا ہے. دیکھیں، جو اللہ نے معین کی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے، لیکن جو حاکم شرع معین کرتا ہے اس کو تعزیر کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے تعزیرات، اور گویا اس کو جو ہے وہ تعزیرات کہا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ تعزیرات جو ہے وہ حد سے کم ہے، یعنی وہ ایسے گناہوں کے سلسلے میں ہے کہ جن کے بارے میں کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے، اور کوئی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین نہیں کی گئی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کن کے بارے میں تعزیرات ہے، کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں تعزیرات ہے، حد نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے صرف یہ دیکھ لینا کافی ہے کہ کن کن گناہوں کی حد بیان کی گئی ہے. جن جن گناہوں کی حد بیان کی گئی ہے، سمجھ لیجئے کہ ان کے بارے میں تعزیرات نہیں ہے، لیکن جن گناہوں کی حد بیان نہیں کی گئی ہے ان کے بارے میں جو ہے تعزیرات جاری کی جائیں گی. اب یہاں پر جو ہے وہ تعزیرات اور حد میں کیا فرق ہے، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ حد کی مقدار جو ہے معین ہے، کس گناہ پر جو ہے وہ کتنی حد لگائی جائے گی، کتنی سزا دی جائے گی. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی انسان چوری کر لیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، अगर कोई इंसान किसी को कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा, ये जो है सारी चीज़ें मुअय्यन है। लेकिन जो है वो ताज़ीरात जो है वो मुअय्यन नहीं है। हाँ, कुछ मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है वो ताज़ीरात भी मुअय्यन है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान अपने माह रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर बातिल कर लेता है और उसको इल्म भी है कि रोज़े को बातिल नहीं करना चाहिए वरना उसकी ये सज़ा है, और ये भी मालूम है कि मेरा रोज़ा है, उसके बाद अगर वो रोज़े को बातिल कर लेता है तो उसको जो है 25 कोड़े लगाए जाएंगे। पहला फ़र्क ये है। अलबत्त एक बात फिर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि हद भी सज़ा को कहते हैं, ताज़ीर भी ताज़ीरात भी सज़ा को कहते हैं, लेकिन हद जो है वो अल्लाह की तरफ से मुअय्यन है और ताज़ीरात को हाकिम शर माहौल और हालात के तकाज़ों के एतबार से मुअय्यन करता है। दूसरा फ़र्क ये है कि ताज़ीरात में कमी और ज़्यादती, यानी सज़ा का कम होना या ज़्यादा होना, वो डिपेंड करता है गुनाह पर, यानी गुनाह छोटा है या गुनाह बड़ा है, लेकिन हद का मामला ऐसा नहीं है। हद जो है जिसने ऐसे गुनाह को अंजाम दे दिया कि जिस पर हद मुअय्यन है, अब चाहे उसने कम अंजाम दिया हो या ज़्यादा अंजाम दिया हो, सज़ा जो है उसको उतनी ही मिलनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जो है वो चोरी करता है या अगर कोई इंसान जो है वो शराब पी लेता है, तो चाहे वो एक कतरा शराब का पिए उसकी भी वही सज़ा है और चाहे वो एक गिलास शराब पिए या जो है वो उससे ज़्यादा शराब पिए, बहरहाल उसकी सज़ा जो है वो वही है। तीसरा फ़र्क जो है वो ताज़ीरात और हद में ये है कि ताज़ीरात जो हैं वो डिपेंड करती हैं फसाद पर और ख़राबी पर, कि जो काम जो गुनाह अंजाम दिया गया है जिसकी ताज़ीरात मुअय्यन की जा रही है उसमें जो है वो कितना फसाद हुआ है, कितनी खराबी हुई है, कितना फ़र्क पड़ा है माशरे पर, कितना फ़र्क पड़ा है उस काम के अंजाम देने वाले पर, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। और बाज़ औक़ात ये भी मुमकिन है कि जो जिस काम पर ताज़ीरात मुअय्यन की जा रही है वो गुनाह ना हो लेकिन जो है उस पर ताज़ीरात जारी की जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा जो है या कोई दीवाना जो है वो किसी ऐसे काम को अंजाम देता है कि जिसके ज़रिए से जो है नुकसान हो जाता है या कोई और काम, तो ऐसी सूरत में चूंकि बच्चा है या दीवाना है तो इन्होंने जो है वो इनकी तरफ गुनाह की निस्बत नहीं दी जा सकती है। क्यों? इसलिए कि अभी इन पर जो है वो अहकाम शरई वाजिब नहीं हुए, बालिग होने के बाद वाजिब होंगे, लिहाजा हद जारी नहीं हो सकती है, लेकिन ताज़ीरात जो है वो जारी होंगे। इसी तरीके से जो है वो चौथा फ़र्क ताज़ीरात और हद के दरमियान ये है। एक बार फिर दोस्तों के सामने अर्ज़ कर दूँ कि ताज़ीरात और हद में फ़र्क ये है कि हद वो सज़ाएँ हैं कि जिनको अल्लाह ने गुनाहों के लिए मुअय्यन किया है, लेकिन ताज़ीरात वो सज़ाएं हैं कि जिन गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से मुअय्यन नहीं की गई है, हाकिम शरा जो है उन सज़ाओं को मुअय्यन करता है। चौथा फ़र्क ये है ताज़ीरात और हद में कि कभी कभी जो है वो हालात को देखते हुए, हालात के तकाज़ों के एतबार से, शख्सियत को देखते हुए, जमान और मकान को देखते हुए और जो जुर्म अंजाम दिया गया है उसकी कैफियत को देखते हुए जो है वो गुनाहगार जो इंसान है जिसने उस काम को अंजाम दिया है उसकी सज़ा में कमी और ज़्यादती का इम्कान है। हालात कैसे थे, मजबूर था या इख्तियार रखता था या इख्तियार नहीं रखता था, आज़ाद था या कैसे हालात में था, क्या था, इस पर जो है वो फ़र्क है कि अगर आज़ाद हालात में था तो ताज़ीर कुछ और होगी, सज़ा कुछ और मुअय्यन की जाएगी, अगर जो है वो मजबूर था तो कुछ और सज़ा मुअय्यन की जाएगी। ये जो है ताज़ीरात में सब फ़र्क करता है, लेकिन हद जो है यानी जो अल्लाह ताला ने सज़ाएं मुअय्यन की है उनमें फ़र्क नहीं करता है बल्कि उनमें जो है वो सज़ा एक ही है। इसी तरीके से पांचवा फ़र्क ये है कि अगर कोई इंसान ऐसा गुनाह अंजाम देता है जिनके लिए हद मुअय्यन नहीं है बल्कि जिन पर जो है वो ताज़ीरात जारी की जाती है, यानी हाकिम शरा उसकी सज़ा को मुअय्यन करता है, उसकी तौबा को कबूल किया जा सकता है। यानी अगर वो हाकिम शरा के पास आने के बाद सज़ा मिलने से पहले आने के बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद इस तरीके का काम अंजाम नहीं दूंगा, ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, तो उसकी तौबा जो है वो कबूल की जाती है और फिर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है बाज़ ऐसे हैं कि बाज़ हुदूद ऐसे हैं यानी जिन की सज़ा, जिन गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला ने मुअय्यन की है उनमें से बाज़ हुदूद ऐसे हैं कि जिनमें तौबा कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि जो है यानी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तौबा कबूल नहीं की जाएगी से मुराद ये है कि अगर वो हाकिम शरा के पास या जहाँ सज़ा मिलती है वहाँ जाने के बाद अगर वो कहता है कि मैंने तौबा कर ली है, अब मैं ऐसा गुनाह अंजाम नहीं दूंगा, तो यहाँ पर उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी बल्कि उसको सज़ा दी जाएगी। तौबा कबूल ना होने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के यहाँ उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती, मुमकिन है कि वो खालिस दिल से तौबा करे और अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर ले, लेकिन यहाँ जो है ज़ाहरी तौर पर उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और वो जो है जिस अपने किए की सज़ा को पाएगा। इसी तरीके से जो है वो ताज़ीरात में जो है अगर कोई इंसान ग़ुलाम है तो उसकी अलग सज़ा होगी। ताज़ीरात में जो है चाहे वो ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, यानी कोई गुनाह जिसने अंजाम दिया है वो आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, अगर ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुअय्यन नहीं हुई है तो दोनों के लिए बराबर है, चाहे किसी ग़ुलाम ने अंजाम दिया हो या किसी आज़ाद इंसान ने अंजाम दिया हो। लेकिन अगर हद है यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसकी सज़ा मुअय्यन की गई है तो उसमें ऐसा नहीं है, दोनों बराबर नहीं है बल्कि दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क पाया जाता है, दोनों की सज़ाएँ जो हैं वो अलग अलग हैं। दोस्तों ये ताज़ीरात और हुदूद के अहकाम थे जो हमने आपके सामने बयान किए हैं। यहाँ पर जो है वो एक चीज़ और हम आपके सामने बयान कर दें और वो ये कि ताज़ीरात जो है वो कभी अल्लाह का हक हैं, यानी ताज़ीरात अल्लाह का हक है यानी क्या, यानी ताज़ीरात जो है वो कभी कभी अल्लाह का हक होते हैं और कभी कभी बंदों का हक होते हैं, यानी जो गुनाह इंसान ने अंजाम दिया है कभी कभी जो है वो बंदों के बारे में होता है, अल्लाह के बंदों के बारे में, यानी अल्लाह के बंदों का हक जो है मारा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो खुद अल्लाह के बारे में होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो गोया जो है उसने अल्लाह का हक मारा है, अल्लाह ने मना किया झूठ बोलने के लिए, या मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जो है वो किसी मोमिन को बुरा भला कहता है तो यहाँ पर जो है वो गुनाह जो उसने किया है वो बंदों के सिलसिले में किया है। ये ताज़ीरात में है, ताज़ीरात जो है वो कभी बंदों के बारे में होती है कभी अल्लाह के बारे में होती है, यानी जो गुनाह अंजाम दिया गया है कभी वो अल्लाह से मरबूत होता है कभी बंदों से मरबूत होता है। लेकिन हद में जितने भी गुनाह हैं यानी जितने भी गुनाह ऐसे हैं जिनकी हद मुअय्यन की गई है उन सब को अल्लाह का हक जाना जाता है। यानी अगर कोई इंसान जो है वो चोरी भी करता है तो ठीक है उसने चोरी की है, एक बंदे को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पर जो है हकीकत में उसको अल्लाह का हक माना जाता है। ये फ़र्क है ताज़ीरात और हद के दरमियान। दोस्तों यहाँ पर जो है वो यही कहना मुनासिब है कि जितने भी ताज़ीरात और हुदूद मुअय्यन किए गए हैं ये सब के सब जो हैं वो गुनाहों के बारे में हैं। बाज़ गुनाहों की सज़ाएँ अल्लाह ने मुअय्यन की हैं, बाज़ गुनाहों की सज़ाएँ जिनकी अल्लाह ने मुअय्यन नहीं की हैं। इससे भी मुराद ये है कि जिनको वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने बयान नहीं किया है वो जो हैं हाकिम शरा उनको बयान करता है। ये सब गुनाहों के सिलसिले में है, यानी इंसान जब गुनाह अंजाम देता है हकीकत तो ये है कि इंसान को गुनाहों को अंजाम ही नहीं देना चाहिए, गुनाहों से दूर रहना चाहिए, माशरा जो है एक पाक माशरा होना चाहिए, समाज बेहतरीन समाज होना चाहिए, वहाँ पर जो है न अल्लाह के हुकूक़ को पामाल किया जाए और ना ही अल्लाह के बंदों के हुकूक़ को पामाल किया जाए, यानी ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि इंसान पर जो है वो हद जारी की जाए या उस पर जो है वो ताज़ीरात लगाए जाएं। हकीकत यह है कि इस्लाम ऐसे ही माशरे को चाहता है, अगर इस्लाम जो है वो कहीं पर सज़ा देता हुआ नज़र आता है, हद जारी करता हुआ नज़र आता है, तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सज़ा देता है ताकि माशरे को पाक किया जा सके, सोसाइटी को अच्छा बनाया जा सके। अगर एक गुनाह अंजाम दे रहा है तो दूसरे लोग जो है उसको अंजाम गुनाह अंजाम देते हुए लालच न कर बैठें, हिर्स न कर बैठें कि जैसे उसने अंजाम दिया है हम भी अंजाम दें, बल्कि इस्लाम उसको सज़ा दे देता है ताकि जो है दूसरे लोग ऐसे गुनाह अंजाम देने की जुर्रत ना कर सकें और माशरे को, समाज को, सोसाइटी को बुराई से बचाया जा सके। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और अगले प्रोग्राम में आपके सामने गुफ्तगू होगी कसास के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।